वृंदा बनाना चाहते थे, गोपियों ने उनको दरवाजे पर रोक दिया। तो ये रोने लगे, उन्होंने उपाय बतलाया, जो माया की उपासना आप करें तो उनकी कृपा से वृंदावन में आपका प्रवेश होगा। इसलिए उन्होंने उनकी आराधना की और आराधना करने के कारण जो माया ने उनको पकड़कर कौन हृदय में
ब्रह्मा
हृदय में लेकर के उनको डुबा दिया।
ब्रह्मकुंड
है अभी जारंगनाथ जी का मंदिर है, उसके उत्तरी दरवाजे के पास में है, उसमें डुबा दिया। और वो परम सुंदरी किशोरी गोपी के रूप में बदल गए और फिर वो राष्ट्र स्थली में राष्ट्र का दर्शन करना चाहते थे गए, किंतु उस दिन राष्ट्र में कृष्ण को या गोपियों को आनंद नहीं हुआ। न जाने क्यों राष्ट्र नीरस लग रहा था। कृष्ण और गोपियों ने विचार किया, इसमें कोई विजातीय व्यक्ति आया है जो इस रस का नहीं है, किंतु किसी प्रकार से ये प्रवेश कर गया है, इसलिए उसको पकड़ करके यहां से बाहर करना होगा। जरा मन देकर के सुनो, अने तो उधर कुछ हुआ उधर में चित्त चला जा सबका। ये लोग खोदने लगे, एक झुरमुट के अंदर में इन्होंने देखा कोई एक किशोरी गोपी छिपी हुई है। उसको देख करके कहा, देखा तो गोपी का वेश, पूछा जैसे तुम्हारा गांव कहाँ है। इनका तो गांव कुछ था नहीं, बतला नहीं सके। तो तेरे बाप का नाम क्या है, तो कहीं पैदा तो हुए नहीं थे गोपियों के घर में, नहीं बतला सके। आज तेरे खसम का नाम क्या है, तो वो भी नहीं बतला सके, विवाह तो हुआ नहीं था। तुम कौन से जूत के हो, तुम्हारा जूत क्या है, वो भी नहीं बतला। कह तुम्हारा गण कौन सा है, तुम कोश के गोपी के अनुगत्य में यहाँ आए हो, तो ये कुछ नहीं बतला सके। तो उनको पकड़ करके गुलचे लगा दिए, गुलचे मार करके उनके गाल फुला दिए। अब रोने लगे और रोते रोते उन्होंने पूर्णमासी जी को स्मरण किया। पूर्णमासी जी वहां पर बताता गई, देखा कि गोपियां उनको पकड़ करके केस और गुलचे लगा रहे हैं। अरे रुको रुको रुको, इनका बड़ा प्रभाव ब्रज में है, कृष्ण की सारी लीलाएं इनके द्वारा संपादित होती हैं। कुछ लोग वृंदा देवी और पूर्णमासी में प्रभेद नहीं समझते, क्या उनमें अंतर है। कृष्ण की समष्टिगत लीला की पुष्टि कारण करने वाली ये पूर्णमासी, समष्टिगत लीला जन्म से लेकर और अंत तक जितनी भी कृष्ण की लीलाएं होती हैं उसकी पुष्टि इनके द्वारा होती है। बंद नहीं कर सकते, फजर 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 तो इसकी पुष्टि उनके द्वारा होती है। और वृंदा देवी क्या करती हैं, केवल मधुर लीला का ही वो कृष्ण के साथ में संयोग करती हैं, बैठिए, मधुर लीलाओं का वो संचालन करती हैं। और उनमें कैसे मिले इसकी ये सब, आप लोग वहां से हट आइए, आप लोग वहां से हट जाइए, तो इधर मैं, आप लोग सब इधर आ जाइए।
पूर्णमासी वृंदा देवी,
वृंदा देवी कृष्ण की मधुर लीला में राधा कृष्ण और गोपियों को कृष्ण से मिलाती हैं और उनकी लीलाओं का संपादन कराती हैं, इसलिए उनका वृंदावन में जन्म है, वृंदावन में उनकी शादी हुई है और वृंदावन का ही वो भाव में। तो पूर्णमासी जी ने आकर गोपियों को समझा बुझा करके ठीक किया, ये आप लोग इस पर कृपा करें। मैंने इस पर कृपा करके गोपियों का शरीर तो दिया, भावना मैं नहीं दे सकता, अब आप लोग कृपा करें जैसे कि इसके अंदर में सचमुच गोपी का भाव था। और ये सारी चीजें उसमें आ जाए। क्या नाम रूप वसन वास गण जूत सेवा अभिलाष पालदासी का अभिमान, ये सभी चीजें हमारे इनके अंदर में आ जाए। उन लोगों ने ऐसी कृपा की, इसलिए उनका नाम हो गया गोपीश्वर महादेव। गोपी बने हुए हैं, गोपियां ही जिनके एकमात्र ईश्वरी हैं, इसलिए वो गोपीश्वर हुए। अंत में कृष्ण ने इनको कहा जे देखो आज से तुमको मैंने वृंदावन का रक्षक तुमको बनाया। वृंदावन में कोई आश्रित विचार असुर ना आ सके, कोई दूसरा कोई लक्ष्मी जैसा भी कोई व्यक्ति हो नहीं आ सके। कल गोपियों के गर्भ से जन्म लिया हुआ पूर्व जन्म का साधन करने वाला वैसा कोई हो एकांतिक रूप में ब्रज के भाव और उसमें भी गोपी का भाव, तब तो उसमें प्रवेश करें, उन पर आप कृपा करें। इसलिए वृंदावनामुनि पते जय सोम सोम मौले सनक सनंदन सनातन नारद वैद्य नारद इत्यादि के भी पूज्य हैं। नारद जी को उन्होंने अष्टकाली लीला इत्यादि की शिक्षा दी है, तब इसमें वो जानते हैं नारद जी भी। और प्रेम प्रयच्छ निरुपाधि नमो नमस्ते, निरुपाधिक जो राधा कृष्ण का प्रेम है आप दे सकते हैं, आपको देने का अधिकार दिया हमने। तब से शंकर जी गोपी के रूप में वृंदावन में रहते हैं और सब लोगों को ये सब चीजें देते हैं। पूर्व जन्म में सतयुग में मैंने आप लोगों को बतलाया है कि किस प्रकार से दक्ष की सबसे छोटी परम सुंदरी रूपवती गुणवती शीलवती सती जी से इनकी शादी हुई। दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी नहीं चाहती थी जे शंकर जी से इसकी शादी हो, किंतु फिर भी उन्हीं के साथ में शादी हुई। शंकर जी ने परीक्षा ली तो अभी उसमें खरी उतरी और उनसे शादी हुई। शादी होने के बाद लाखों कोटि वर्ष पहले बाद में किसी कारण से दोनों में मनोमालिन्य हो गया, शंकर जी और दक्ष प्रजापति। शंकर जी को नहीं हुआ, दक्ष प्रजापति को ही हुआ। वो समझता था कि इनका मैं ससुर हूं और शंकर जी से सम्मान चाहता था, किंतु एक समय में सभा में बैठा हुआ था, शंकर जी ब्रह्मा जी बैठे हुए थे और बड़े बड़े महर्षि इत्यादि सभी उसमें बैठे हुए थे। उसी समय में दक्ष प्रजापति आया, उसको देख करके ब्रह्मा जी और शंकर के अतिरिक्त सभी लोग उठ करके खड़े होकर के उसका अभिवादन किया। वो इसी पर बिगड़ गया, ब्रह्मा जी हमारे पूज्य पिता के पिता के पिता हैं, किंतु ये बंदर जैसा मुंह किया हुआ हड्डियों की माला पहनने वाला और भस्म मुर्दा घाटी का भस्म श्मशान का भस्म रवाने वाला सर्पों की माला पहने हुए कुरूप व्यक्ति, हमने इसको क्यों ने जिन्हें बनाया इसको अपना जमाता, ये जमाता होने के योग्य नहीं था। मैं आया यहाँ इसका बाप लगता हूँ और हमको उठकर कभी वादन नहीं किया। शंकर जी कुछ नहीं बोले, कहा जी से जाओ तुम्हारा जो पूजा इत्यादि करेगा वो पसंद हो जाएगा। और भी उस सभा से वो चलने लगा उनको छोड़ करके। शंकर जी बड़े दुखी हो गए, देखो हमको ये समझ नहीं सका, जो भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं विश्व ब्रह्मांड को सब कुछ करते हैं, उनका प्रणाम एक भगवान का प्रणाम करने वाला व्यक्ति विश्व ब्रह्मांड में सबको ही प्रणाम कर लेता है, ये नहीं इस चीज को समझ। अभिसंपाद्या भृगु ने उनको अभिशाप दिया, पलटा पलटी हुई। इसके बाद में शंकर जी उठ करके वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद में बहुत दिनों के बाद में शंकर जी सती को लेकर के त्रेता युग में जब रामचंद्र जी आए, सीता का अपहरण हुआ, उस समय में उनको दर्शन करने की लालसा से वहां गए दंडकारण्य। और देखा जी हाशिते 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 कर रहे हैं। पार्वती जी उन्होंने उनको प्रणाम किया, प्रदक्षिणा की, पर सती जी ने पूछा आप किसको प्रणाम कर रहे हैं, ये कौन है? एक तो परब्रह्म राम है और एक दशरथ के पुत्र राम है। ये दशरथ का पुत्र राम है, इसको पता नहीं जी हमारी सीता को कौन ले गया, और उसमें इतनी शक्ति नहीं जो उसे वहां से सीता जी को बुला सके, तो ये परब्रह्म नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा जे तुमको संदेह हो तो परीक्षा कर लो, और ये कह के आगे बढ़े, प्रणाम करके लौट रहे थे। उन्होंने कहा परीक्षा करके देख ली, उन्होंने सीता जी का रूप बनाया और उनके सामने गए, राम के सामने। उन्होंने उनको अनदेखा की, देखते हुए भी नहीं देखा, दूसरी तरफ से आए, फिर तीसरी तरफ से गई। अंत में जब राम के सामने आई सीता के रूप में, वो समझी थी कि यदि सीता हमको समझ करके आकर के आलिंगन करेंगे और बड़े आनंदित होंगे। रामचंद्र जी सहज स्वाभाविक धीर की भांति हाथ जोड़कर चले, मैया आपको नमस्कार है। शंकर जी तो आगे चले गए, आप यहाँ पर कैसे पिछड़ गई अकेले? समझ आ रही, ये तो जान लिया तो यही परब्रह्म है, तुमको नमस्कार करना चाहिए। यही नमस्कार किया, देखती है, देखी सीताराम सीताराम सीताराम, जितने पेड़ पौधे जीव जंतु सब कुछ, इधर देखते हैं सीता और राम, सीता और राम, सीता और राम में कभी भी विच्छेद नहीं होता। बिना सीता के राम नहीं रहते, सीता जी बिना राम तो नहीं रहते। अब तो वो झुक करके एकदम साष्टांग प्रणाम किया। इतने में देखा जैसे वो दृश्य भी नहीं, राम हाशिते हाशिते करते हुए रो रहे हैं और एक पेड़ से पूछ रहे हैं जो बतलाओ तो मेरी सीता, प्यारी सीता को देखा। उस समय में उन्होंने उनको चेतन हुआ, फिर इसके बाद में लौटी शंकर जी के पास में गई। शंकर जी ने पूछा परीक्षा की, मैं क्या परीक्षा करूंगा, आप तो सभी जानते हैं, फिर झूठ बोली भी गुरु से। तो उन्होंने कहा जी सीता का रूप धारण किया था, इसलिए आज से इस रूप में सीता का जो रूप धारण किया, आपसे मैया मेरी आराध्या दी, मैं इसको अब पत्नी के रूप में नहीं देख सकता, ये मेरी मैया है। और उसी समय जय ही संकल्प या आकाश से पुष्प गिरने लगते, उनके ऊपर मैं बरसा हूं, धन्य है आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी संकल्प नहीं कर सकता। उन्होंने पूछा जी कौन सा संकल्प आपने कर लिया? वो मौन रहे। अब तो बड़ी ये चिंता में पड़ी, जब वहां आश्रम में गए थे उनको सामने आसन मैया का दिया, बाएं तरफ नहीं बैठाया, अब समझ गई कि हमने सीता का रूप धारण किया था, इसलिए इस रूप में अब हमको पत्नी के रूप में नहीं ग्रहण कर सकते। अब तो वो बड़ी चिंता, और उनकी सैकड़ों वर्षों की समाधि लग गई। समाधि लगने के बाद ही मैं जब 102 वर्ष के बाद में आंख खुली, अब ये घटना हुई, और प्रजापति शंकर को नीचा दिखलाने के लिए बड़ा भारी यज्ञ कर रहे थे, उसमें इनको नहीं निमंत्रित किया, सब देवताओं किया, वो विमान के द्वारा वहां पर सभी आ रहे थे। इनको देखकर कहा मैं पिताजी के घर में जाऊं, ये सब वहां जा रहे हैं और मैं नहीं जा रही। शंकर जी से उन्होंने आदेश मांगा, उन्होंने कहा मैं आदेश नहीं देता, पिता के यहाँ गुरु के यहाँ तो जाना बिना निमंत्रण का जाना उचित है, किंतु यदि पति के साथ में पिता का विरोध हो तो मत जाना, ऐसा शास्त्र की बात है, अब तुम जैसा समझो। वो एकदम, उनको तो था कि हम इस शरीर से ये ग्रहण नहीं करेंगे, शरीर को छोड़ना है, इसलिए वो बड़ी दुखी होकर के और जैसे तैसे बिगड़ करके फूक मार मारती और पैर से पृथ्वी पर धमाका देती हुई अकेले चल पड़ी रोती रोती। शंकर जी ने अपने परिकरों को लेकर के भेजा, जैसे हमारी सवारी लेकर के नंदीश्वर नंदी को और ले जाकर चढ़ा करके बड़े सम्मान के साथ में ले जाओ, वो लोगों ने चढ़ा करके सम्मान लेकर के गए। किंतु आज मैया का अतिरिक्त किसी ने स्नेह से नहीं कहा, डर के मारे पिताजी के यज्ञशाला में गई, वहां पर किसी ने भी अभिवादन नहीं किया, पूछा नहीं, उनकी बहनों ने भी डर के मारे कुछ नहीं कहा। देखा जी शंकर जी को यज्ञ का भाग नहीं दिया गया, बस एकदम क्रोध हुआ और वहीं पर बैठ गई, बैठ करके समाधि हुई, शरीर से ही हृदय से आग निकली और उनको जला करके भस्म कर दिया। शंकर के दूतों ने देखा, बस शंकर जी को पता चला, अब तो वहां पर युद्ध जैसा हो गया। शंकर जी ने अपने विशेष एक रूप से प्रकाशित होकर के कौन सा रूप,
वीरभद्र,
वीरभद्र के रूप में वहां पर भेजा, और उसने जाकर के उसका गला काट लिया और भृगु की दाढ़ी नोच ली, और जितने उस सभा में पहले हंसे थे दांत तोड़ दिया, कुशा इत्यादि के जो जो उसमें गया था सबको मार पीट करके और यज्ञमय को एकदम ध्वंस कर दिया। इस तरह से और भी बातें हैं, हम पीछे बतलाएंगे, अभी ये सब प्रस्तुत हैं, इनका थोड़ा सा आप लोग आनंद लीजिए। जो वहां पर सामने बैठे हैं ये सब कम भी यार ये सब
वंचाकल्पतरुभ्यश्चिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महापतनाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतत्विषे। हमारे तो हिंदी बोलवार अभ्यास ये बांग्ला माझे माझे आशी अब सब देखो बांग्ला बोले अपनारा भाव ग्रहण करने भाषा त्रुटि विचारण त्रुटि हो गए जगत समस्त प्राणी सुख चाहे
मिशन बंद करो
ये सुख चाहे ना और एम को प्राणी ना जे दुख चाहे किंतु एम ने जग ये निरवच्छिन्न सुख पावा जाए ना आ दुख चाहे ना किंतु दुख ही पावा जाए सुख पावा जाए ना एम की समस्त विश्व लोग जो तो बुद्धिजीवी लोग जो तो कल्चर लोग आछे राष्ट्र संघर माध्यम विश्व के सुखी एवं शांति करवार जन्य चेष्टा करे किंतु फल ता उठो युद्ध बंद होय ना अत्याचार बंद होय ना गरीब के धनी कर दे पारे ना एमन कि विश्व समस्त साइंटिस्ट वैज्ञानिक मिले एक दिन लोके एक दिन आयु बाढ़ते पाए मरते हैं सकल सकल ही चाहे जे हमारे चूल केलो ना पाके दांत ना पड़े वृद्ध वृद्धा ना हो किंतु एवं पर्यंत तो साइंटिस्ट लोग एमन कोनो आविष्कार करते हैं कंप्यूटर इत्यादि आविष्कार करे एमन की रान्ना घर थे आरंभ करे हृदय प्रत्यारोपण करा और ए पृथ्वी के अत्यंत निकट कर दिए शब्द मतन तीव्रगामी वायुवान द्वार और टेलीविजन इत्यादि द्वारा এখন কোথায় কোথায় খেলা হচ্ছে ক্রিকেটে সব লোক টিভি নিয়ে বসে গেছে আর দেখছে ওখানে বল খেলছে আর হো হাল্লা চলছে কোথাও বম ছুটছে কোথায় কি সব ঘরে বসে দেখছে এগুলি বৈজ্ঞানিক টাইম এন্ড ডিস্টেন্স কে তারা দিতে দিয়েছে এমন আবিষ্কার করছে মাথা খারাপ হয়ে গেল অন্য লোকের মাথা নিয়ে লাগিয়ে দিল চোখ খারাপ হয়ে গেল একটা লোক মরছিল তার চোখ তাকে বাহির করে রেখে দিয়েছে লাগিয়ে দিল চোখ এসে গেল কিরকম অদ্ভুত এইসব বলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার গুলো কিসের জন্য সুখী হওয়ার জন্য কিন্তু সুখটা পাওয়া গেল কিনা এইটি হচ্ছে বিচার যে বৈজ্ঞানিক অত বাহাদুরি সে বৈজ্ঞানিক মধ্যে আর একটু প্রদীপের তলাতে অন্ধকার থাকে এত সুখের চেষ্টা ওরা করছে, কিন্তু এই বৈজ্ঞানিকের ফলে আমাদের আজ থেকে 100 বছর পূর্বে থেকে আরম্ভ করে লাখ লাখ কোটি কোটি বছর পূর্ব পর্যন্ত পরস্পর যে প্রীতি ছিল, ভালোবাসা ছিল, প্রেম ছিল, সে উভাব হয়ে গেছে। পতি আর পত্নীর মধ্যে যেরকম সীতারামের কি ছিল, রাধা কৃষ্ণের শোনা যায়। আজকে আমরা দেখি যে সে 60 বছর পূর্বে যে স্ত্রী কিছুই পড়ালেখা জানতো না, প্রাণ ঢেলে দিয়ে তার পতিকে, আর ওই পতি তাকে প্রাণ ঢেলে ভাই ভাই মধ্যে প্রীতি নেয়, ভাই বোনের মধ্যে তো একেবারে নেওলা আর সাঁতের মতন যুদ্ধ। বনটা আমার ভাগের তাই না গিয়ে গেছে, এমনকি আজকে এমন স্থিতি, স্ত্রী ব্যাংক ব্যালেন্স পৃথক, পতির অলাপ, ছেলে কে আছে তার ব্যাংক অলাপ, মেয়ে আছে চারজন তার অলাপ, কোথায় প্রীতি? এ দেশে তো যেমন তেমন, পাশ্চাত্য দেশে আরো ভয়ঙ্কর অবস্থা। লোকের ভিড় বেড়েছে, কলকাতাতে আমরা দেখেছি যখন বড় বাজারেতে যখন জমা হয়, গাড়ির উপর গাড়ি, মানুষের উপর মানুষ ধাক্কা খাচ্ছে, যাওয়ার জায়গা নেই। ইংল্যান্ড আর শিকাগো আর অন্য তো কথাই বাকি, জাপানে ধাক্কা পর ধাক্কা চলছে, কিন্তু প্রীতি পরস্পর নেই। একটা লোক পড়ে গেল, একটা লোককে উঠিয়ে দিয়ে কিছু সাহায্য করি, হাসপাতালে পৌঁছিয়ে দিই, এত প্রীতিপূর্বক কিছু এত সান্ত্বনা দিই, এটি নেই। প্রীতি চলে গেল কোথায় না যায়। একটি ফ্ল্যাটেতে একটা লোকের বিবাহ হচ্ছে আর একটা লোকের বাড়িতে লোক মরে গিয়েছে, কোন সহানুভূতি নেই, জানি না যে সে কোথাকার লোকে। একটি ফ্ল্যাটের অন্য লোকের সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত, এটি বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞানের, আধুনিক বিজ্ঞানের অভিসম্পাত প্রতিমা। আত্মার যে গুণগুলি ছিল, সত্যতা, পরোপকার, পরস্পর মৈত্রী, প্রীতি, ভালোবাসা, সব উড়ে গেল। আর এই শরীরের ক্ষুধা পশুদের মতন, গাধা আর শুকরের মতন, প্রীতির বদলা কাম হয়ে গেছে, স্বার্থময় কাম, কোথাও সুখ নাই। কালকে বিবাহ হলো, আজকে শুনছি যে সে বিচ্ছেদ হয়ে গেল, পতি আর পত্নীর বন্ধন না। এটা শিক্ষার অভিসম্পাত না কি বলা যায়, কিছু বোঝায় না। আমরা খুব বড় শিক্ষিত হচ্ছি, পুরনো আমাদের পূর্বজেরা মহামূর্খ, গণ্ড মূর্খ ছিল, কিছুই জানতো না। আমি মনে করি যে কোটিপুণি তারা শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত ছিল পূর্বকালে, যারা কথা কখন না জানলেও ভালোবাসা প্রীতি ছিল, ঢালাও প্রেম ছিল, তাদের মধ্যে পাতিভক্তের গুণ ছিল, ভাই বন্ধুর মধ্যে পরস্পর প্রীতি, একসঙ্গে 100 লোকের পরিবার এক জায়গাতে থাকতো, আর সে পরিবার কোথায় চলে গেল বিচ্ছিন্ন, ছেলে বাবার সঙ্গে পৃথক হয়ে গিয়ে একটা লাভ ম্যারেজ করে দিয়ে নিয়ে আসলো বাড়িতে, পৃথক হয়ে গেল, জয়েন্ট ফ্যামিলি থেকে সরে গেল, আর তারপরে দুদিনের পরে মরে গেল, আর তার স্ত্রীকে কে দেখবে, তার ছেলেকে কে দেখবে, অসহায়। এই হচ্ছে বর্তমান জগতের অভিসম্পাত, সকলেই আপনারা বুঝতে পারেন, কোথাও অপূর্তি নাই। বেটা বাপ, মাতা পিতা, ভাই বন্ধু, বন বন, কোথাও প্রীতি নাই, সমাজের সঙ্গে তো কথাই আছে। এই হচ্ছে যুগের সমস্যা, এই যুগের হচ্ছে এইটি সবচেয়ে বড় সমস্যা, প্রীতি নাই পরস্পর। মা বৃদ্ধ হয়ে গেল, আর কেউ পুষে না বাড়িতে, বাবা বৃদ্ধ হয়ে গেল, তার সব সর্বস্ব নিয়ে নিল, আর তাকে কেউ পুষে না, খোলা দেখায়, যাও তুমি এখন বেগর নাকি কি আছে ভিক্ষা গৃহেতে, হ্যাঁ বৃদ্ধাশ্রম, যাও বৃদ্ধাশ্রম কর, বৃদ্ধাশ্রম ওল্ড হাউস, ওল্ড হাউসে পাশ্চাত্য দেশে কি করবে, সে নাতিকে কোথায় কোলা নিয়ে কোলে নিয়ে তাকে শিক্ষা দেবে কিছু করবে না, এখন অখবার নিয়ে ওইখানে তো বসে থাকবে, হ্যাঁ দুঃখতে মরে যায়। এইটা যুগের সমস্যা। আমাদের বড় বড় বিদ্বানের উপর বিচার করছে না, কোথায় জহান্ন মেতে চলে যাচ্ছে দেশ ওরা সাফলেতে। আজকে শুনছি কোথায় হাওয়ালা কাণ্ড নামে কি একটা কি হয়েছে, কি যে হাওয়ালা, যবু রাজনীতিকরা সভ্রষ্ট, রাষ্ট্রপতি থেকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী যে দেশের এইরকম হয় যদি হয় তাহলে দেশের গতি কি হবে, শিক্ষা কি করবে সব ছেলে পেলে মেয়েরা, কোথায় আরো সাতালে আমরা চলে যাচ্ছি। মনে করছি আমরা খুব উন্নত হচ্ছি, মা বাপকে কলা দেখিয়ে গুরুজনকে কলা দেখিয়ে আমরা নিজে কোথায় একবারে স্বর্গেতে চলে যাচ্ছি। এই হচ্ছে যুগের সমস্যা। এখনো অবশ্য সময় আছে, যদি চেতে যাই তাহলে আমাদের মঙ্গল। এই জন্য আজ থেকে পাঁচ বছর পূর্বে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমের মূর্তি, প্রেমের সন্দেশ নিয়ে, প্রেমের কয় প্রেমের পরিকল্পনাবলী নিয়ে এই বাংলাদেশে তুমি অবতীর্ণ হয়েছ, নূতন করে বাণী শুনাইলেন তুমি। যদি জগতে সুখ শান্তি চাও তাহলে প্রেমের দিকে। আমরা হিন্দু নাই, মুসলমান নাই, খ্রিস্টান নাই, আমরা বৌদ্ধ নাই, আমরা কংগ্রেসই নয়, আমরা কমিউনিস্ট নাই, আমরা এই সব কিছুই নাই, আমরা কি হচ্ছি, আমরা প্রভু দাসে দাসে অন্তাস হচ্ছি। আমরা ওই জগৎ থেকে প্রেম আমরা ভুলে গেলাম, ওইখান থেকে মায়া দ্বারা ভগবান তাকে এই জগতে ফেলে দিলেন, যাও শিখো এই প্রেমের বাণী নিয়ে। যিনি বাঘ ভালু ছাগল সকলকে এক ঘাটেতে জল খাওয়াইলেন, বনেতে তিনি যখন যাচ্ছেন তখন হরি বল হরি বল সকলকে প্রেম ঢালাউ দিয়ে দিলে, যা কি
এমন দয়ালু প্রভু নাহি ত্রিভুবনে কৃষ্ণ প্রেম জন্মায় যার দুর্দর্শন,
যাহা দুর্দর্শনেতে প্রেম হয়ে যায়। ওইখান থেকে বাঘ ভালু দেখছে হরি বলিনি করছেন, আর সকলই প্রেমেতে মত্ত হয়ে গেল, ভুলে গেল হিংসা ভুলে গেল, আর ছাগলকে বাঘ খেতে যাচ্ছে না, এইরকম হতে পরস্পর প্রীতি হয়ে গেল ভগবানের দিকে। লোক ভগবানকে কলা দেখিয়ে দিয়ে নিয়ে মনে করে যে সে আমরা প্রীতি করব, হয় না, কৃষ্ণকে প্রীতি করলে সকল প্রতি প্রীতি হতে পারে স্বাভাবিক গতিতে। এই জন্য মনুষ্য মাত্রের শুধু নয় প্রাণী মাত্র সমস্ত লোকের ধর্ম কি এই প্রেম। আমরা প্রেমটাকে ভুলে গিয়েছি, বিস্মিত হয়ে গিয়ে অত দুঃখ। চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন যে যদি জীবিত থাকতে চাও তা ওই প্রেমটাকে আবার উদ্বুদ্ধ কর, তাহলে তোমাদের মঙ্গল হবে। এমন কোন প্রাণী আছে যারা হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, খ্রিস্টান হোক, ঈশাই বৌদ্ধ যাই হোক না কেন, তার মধ্যে প্রীতি না দেখতে পাওয়া যায়? প্রীতি চায় না, সুখ চায় না, সুখের নামান্তর হচ্ছে আনন্দ, সুখেই বলে আনন্দ, অন্যটা ওয়ার্ড। আবার এই আনন্দকে বলে প্রীতি, এই প্রীতি হচ্ছে প্রেম, সব এক অর্থ বোধ। তবে একটা সুখের মধ্যে আনন্দের মধ্যে একটা ফাইন ডিফারেন্স আছে, সুখ পার্থক্য। ওটা কি, সুখ নিজের জন্য হয়, আর প্রীতি নিজের জন্য হয় না, সবটা পরের জন্য হয়, ভগবানের প্রতি হয়, তখন তার নাম হচ্ছে প্রীতি। আর যখন আমার জন্য যা কিছু করি সুখের জন্য তার নাম হচ্ছে কাম, এই হচ্ছে দুঃখ। আপ্রীতি হচ্ছে আমার জন্য কিছু চাইব না, কিছু আমার চাই না, আমার যাহাকে প্রীতি করি তাহাকে সব প্রীতি দিই, তাহার ভালোবাসার জন্য আমার প্রাণটা পর্যন্ত বিসর্জিত আছে, এর নাম হচ্ছে প্রীতি, এরই নাম হচ্ছে প্রেম। চৈতন্য মহাপ্রভু সেই প্রেমের বাণী নিয়ে প্রেম দেওয়ার জন্য জগতে এসেছে। উনি যদি জগতে না আসতেন আমরা প্রেম শব্দ বলে যে কি, প্রীতি কাকে বলে, এই কিছুই আমরা বুঝতে পারছি না। দেখেন একটা বাঘ আছে, সমস্ত প্রাণীকে হিংসা করে, একটি বাঘও আছে মহান সব প্রাণী, সব লোকে মারে, তার ছেলে মেয়েকে মারে, তার পত্নীকে মারে, কি তাকে ভালোবাসে, এই যেন অত্যন্ত হিংস্র প্রাণীর মধ্যেও বাঘ ভালু সাপ শুকর কুকুর যা কিছু জগতে প্রাণী আছে মানুষের মাত্র তো কথাই বাকি সকলের মধ্যে এই প্রেমটা আছে। কিন্তু এখন বর্তমানে যে প্রেমটা আছে এটা হচ্ছে বিকৃত নিজের জন্য। আমার স্ত্রী খুব সুন্দরী, পরম সুন্দরী, রূপবতী, গুণমতী, সব তার গুণ আছে। আগুন মধ্যে পুড়ে গেল, বিরূপ হয়ে গেল, আর কাজ করতে পারে না। আমি যা চাই সে তো করে না, আর তত ভালো আজকের দিনেতে তাকে ছেড়েছিল, অন্য বিবাহ করে। এটাকে প্রতি বলে পতি পূর্বে আছে, রুগ্ন হোক, নির্ধন হোক, অথর্ব হোক, সব রোগে জর্জরিত হোক, অর্থ নাই ও রোজগার করতে পারে, তথাপি সে কি করে তার সেবা করে। আমরা শুনছি সভ্য দেশে লর্ড কেনেডি স্ত্রী 25টি বিবাহ করে ও শান্ত হয় না, একটা শুকরও অত করতে পারে না। আজকাল 400 বলে একজনকে ইংল্যান্ডেতে আছে রাজকুমার, তার স্ত্রীটা কি ডাইনা নাকি ডাইন, তিনি কি করেন তারপর